ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को अच्छा लग रहा है? हाँ, बाबा का बेहद घर, सभी कामकाज से फारिग, न भाइयों को दुकान में जाना। अच्छा लग रहा है ना भाइयों को कि नहीं अच्छा लग रहा है? दुकान के बिना चैन तो नहीं, ऐसा तो नहीं ना? हाँ, न माताओं को खाना बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार, रोज सोचना क्या बनाना। तो इन सभी बातों से बाबा ने फारिग किया है, इसलिए बेहद का घर, बाप दादा का घर, सो अपना घर। तो सभी आराम से है ना? बाबा कहते हैं ना, यहाँ आओ, विश्राम पाओ और रिफ्रेश हो जाओ। तो विश्राम तो है ही, क्योंकि खुद की जवाबदारी का कोई कारोबार नहीं है। रिफ्रेश होना है, माना तरोताजा हो जाना है। जिस लक्ष्य से हम बाबा के बने हैं, वो लक्ष्य रोज याद रखना है, ताकि इधर उधर ना हो जाए। तो जिस लक्ष्य से हम बाबा के बने हैं, जिस निश्चय और नशे से ज्ञान में चले हैं, जिस उमंग उत्साह से हम योगी तपस्वी बने हैं, उसमें जरा भी ढीलापन नहीं आना चाहिए, है ना? चलते 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 थोड़ा ढीलापन आ जाता है ना, इधर उधर अटेंशन जाने लगता है, अलबेलापन आने लगता है। तो बाबा कहते हैं, दुनिया में तो बहुत झंझट है, अनुभवी आप सब बैठे हैं, घर गृहस्थी की कितनी बातें हैं, नौकरी धंधे की भी कितनी बातें हैं, तो थोड़े समय के लिए यहां आकर के हम उन बातों से अलग होते हैं और जीवन की मूल बातों पर विचार करते हैं कि अल्टीमेट तो आत्मा को क्या साथ लेकर जाना है। बेशक जीवन में, यज्ञ में, सेवा में, समाज में, धन साधन सुविधाएं सब कुछ चाहिए, और उसी के लिए आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो तो आवश्यक प्रवृत्ति है, पर दिन रात केवल उसी में लगे रहेंगे तो हम आत्म कल्याण, आत्म उन्नति के लिए और कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बीच बीच में ये जरूरी है कि हम दो पांच दिन के लिए हमें ही वो गृहस्थी संभालनी है, हमें ही वो नौकरी धंधा करना है, पर कुछ समय डिटैच होने से, न्यारे होने से हम शांति से सोच सकते हैं कि जो कुछ दिन रात हम कर रहे हैं उसमें से क्या जरूरी है, कितना आवश्यक है। बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है तो कुछ भी हौच-पौच, कैओस, संघर्ष होने की संभावना हो जाती है, पर ट्रैफिक कंट्रोल रेड सिग्नल हो जाता है तो स्टॉप हो जाते हैं, फिर चैनलाइज कर देते हैं तो परिस्थिति ठीक रहती है। तो जीवन में पैदा हुए तब से तो हम कहते हैं ना, हर क्षण जन्म से लेकर मृत्यु की ओर चल रहे हैं, है ना? तो बीच में कुछ रुक कर देखने की, ऑब्जर्व करने की, सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आवश्यक है, किस में फायदा है ना? ये हरेक को सोचने की आवश्यकता होती है। तो बाबा के घर में इस प्रकार भट्टियों का आयोजन किया जाता है और कुछ दिनों रूटीन से अलग होकर हम शांति से बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं। वहां तो नित्य ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हैं, क्लास करते हैं सुबह या शाम, चाहते भी हैं पर फिर क्लास करके दौड़ते हैं बराबर, है ना? माताएं भी दौड़ती है, भाई भी दौड़ते हैं, क्योंकि नौकरी पर जाना, घर संभालना, तो चाहते हुए भी क्या सुना उस पर गौर नहीं कर सकते, उस पर गहराई से सोच नहीं सकते। तो ये इच्छा तो रहती है कि खास टाइम निकाल कर योग करे, खास टाइम निकाल कर बाबा के अव्यक्ति महावाक्यों को गहराई से पढ़े, खास समय निकाल कर मनसा सेवा करें वाइब्रेशन के द्वारा, पर वो फुर्सत नहीं होती। यहां आपको वो फुर्सत है। अवश्य आप सभी ने अपने आप का भी निरीक्षण किया होगा, स्वदर्शन किया होगा, क्योंकि जब तक हम डिटैच होकर अपने आप को नहीं देखते तब तक अपने आप में क्या ठीक करना है वो पता नहीं चलता। एक कंपनी के मैनेजर्स का ग्रुप यहां आया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें एक मैनेजर जो खुद भी बुद्धिमान था, शायद मैंने आपको कहा भी होगा ये, तो दो तीन क्लास करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विचार है जैसे आप सब बता रहे हैं, लेकिन मेरी कंप्लेन है कि मुझे कोई सुनता नहीं है। तो हम सभी ने उनको कहा कि भाई नेक्स्ट क्लास में आप हमें भी नहीं सुनिए और बाहर कैंपस में साइलेंस में वॉक करिए, गार्डन में जाइए और स्वनिरीक्षण करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्यों लोग आपको सुनते नहीं हैं। शाम के क्लास में वो आए, बड़े खुश नजर आ रहे थे। हम सब ने पूछा कि आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? उन्होंने कहा कि हाँ, जो मैं एक घंटा साइलेंस में वॉक किया, अपने आप को देखा, तो मुझे समझ में आया कि लोग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं ही किसी की नहीं सुनता। उनको ये ईगो था इसलिए वो किसी की सुनते नहीं थे। तो जब हम किसी की नहीं सुनेंगे तो हमारी कौन सुनेगा? तो हम सभी ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, रोज क्लास योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा के मददगार साथी बच्चे हैं हम। पर हमने आपको देखे कि किस लक्ष्य से हम बाबा के बने थे और उसी लक्ष्य की दिशा में हम चल रहे हैं, तो समझ में आता है। चल रहे हैं हम 20 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं, पर मंजिल की दिशा में चल रहे हैं। मंजिल क्या है? मंजिल क्या है हम सबकी? क्यों हम ज्ञान योग का नित्य अभ्यास करते हैं? क्यों हमने दुनियावी मौज शौक सब चीजों का त्याग किया है? किस लिए? ज्ञान योग करके हम क्या बनना चाहते हैं? तो सबको लक्ष्य है ना। बाबा जो कहते हैं मैं पतित को पावन बनाने आया, तो पावन बनने का लक्ष्य है। कोई भी विकार ना रहे, आत्मा की स्थिति हिलती कब है? जब कोई ना कोई माया का आकर्षण आता है तो अपसेट होते हैं ना, भाई अवस्था बिगड़ गई, माया का तूफान आ गया, संदोष लग गया, है ना। कुछ भी जब हम कोई ना कोई विकार के प्रभाव में आते हैं तो अवस्था हमारी डगमग होती है, मूड ऑफ होता है, खुशी गायब होती है और इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है और आकर्षण आते हैं। तो फिर हम लक्ष्य को याद करते हैं कि लक्ष्य क्या है। जीवन में हमें सुख आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, परंतु शुद्ध चाहिए, है ना, सात्विक चाहिए, रूहानी चाहिए, क्योंकि दैहिक भौतिक लौकिक सांसारिक सुखों में आनंद में प्यार में है ना, उसमें तो आत्मा की कोई उन्नति नहीं है। आज लोग बहुत आनंद मौज करते हैं पर कोई मर्यादाएं नहीं, कोई संयम नहीं, है ना, कोई कल्याण का भाव नहीं। तो हमें चाहिए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति, परंतु हमें सत्य चाहिए, शुद्ध चाहिए, बनावटी नहीं चाहिए, दिखावटी नहीं चाहिए। वहां ही तो रिलेशन टूटते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते हैं कि भाई झूठा प्यार निकला, है ना, धोखा किया, बनावट की। तो आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, अविनाशी है, इसलिए आत्मा को जो कुछ चाहिए वो भी कैसा चाहिए, सत्य चाहिए, शुद्ध चाहिए, अविनाशी चाहिए, टेम्पररी नहीं चाहिए, मतलब से नहीं चाहिए। यही तो आपसी रिलेशन में टकराव खिटपिट होने का कारण क्या है, यही है ना। तो बाबा मिले, सत्य ज्ञान मिला, सही मार्ग मिला, है ना, तो हम सब ने अपने जीवन को परिवर्तन किया। बाबा से हम सत्य शुद्ध सात्विक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सही ज्ञान बुद्धि में नहीं, जीवन की परिस्थितियों को हम यथार्थ समझ नहीं सकते, है ना। बिना ज्ञान आप अचल अडोल नहीं रह सकते। हमें खुद खुद को समझाना होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा रोज सत्य ज्ञान देते। भक्ति में क्यों अवस्था नहीं बनी, बहुत शास्त्र सुनते थे, बहुत कथाएं सुनते थे, बहुत गुरुओं के प्रवचन सुनते थे, क्योंकि बेसिक नहीं ना, मूल चीजें नहीं पता। कथाएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, मूल्यों की वैल्यूज की बातें सुनाते हैं, पर बिना आध्यात्मिकता गुण भी टिक नहीं सकते, क्योंकि गुणों का कनेक्शन तो आत्मा से, गुण तो आत्मा में धारण होते हैं। तो रोज सुबह हम बाबा की मुरली सुनते हैं, वो मूल सत्य ज्ञान बाबा हमें देता है। बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल तरीके से बाबा समझाते हैं, पर सत्य बातें समझाते हैं। बाकी और किसी के पास, बाबा कहते हैं ना कि जैसे योग है, योग की लंबी चौड़ी विधि रीति, आसन, प्राणायाम, साधन, ये सब बताएंगे, पर किसको योग किसके साथ लगाना है वो कोई नहीं बता सकता। वहां वो यही बता देते हैं कि आप अपने अपने इष्ट को याद करो, परम कौन है वो पता ही नहीं। तो जीवन है, माना परिस्थितियां तो आनी ही है, है? हम सबको बाबा ने समझा दिया है, ये कलयुग अंत का समय है। जितनी ओड विचित्र परिस्थितियां हो सकती है वो अभी होंगी, है ना? बाबा कहते हैं ना, अति पर जाकर अंत होना है। अति का अंत होता ही है, तो ये भी सब अति पर जाएगा। तो कहते हैं ना भी, ख्यालों में ख्वाबों में नहीं होगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो आप सब जानते भी क्या क्या संसार में हो रहा है। हम सबके सामने भी ये परिस्थितियां, क्योंकि हम इस दुनिया के बीच में हैं, इन परिस्थितियों को सामना हमें भी करना होगा। तो ये अंत का समय है, अति के अंत का समय है। इसलिए रोज की मुरली में आप देखिए, कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ने विनाश की बात ना कही हो। रोज कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बाबा बताते हैं। कई भाई बहने सोचते थे कि बाबा बरसों से कहते हैं, होता तो कुछ नहीं करके अलबेले हो जाते। बाबा कहते हैं पर होता तो है नहीं, पर कोई पूछ के तो होना नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी आएगी और ऐसा लॉकडाउन होगा, ऐसे ऐसी जीवन की, परिवार की, नौकरी धंधे पर असर आएगा, किसी ने सोचा था? कितने कितने धनाढ्य देश, कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांस देश, कितने साइंस में मॉडर्न बने हुए देश, पर सारे एक लाइन में आ गए। सबके सामने परिस्थिति है, तो परिस्थितियां तो आनी ही है, है ना? बाबा के बने तो भी हमारे सामने ऐसी क्यों परिस्थिति आती है, सोचते हैं ना ऐसा कहीं, भाई बाबा के बने तो आपने भाई बहुत बड़ा तीर मार दिया क्या? हाँ, हम तो अपने सुधार और उद्धार के लिए बाबा के बने हैं। भगवान के बने हैं तो हमने जो हिसाब किताब पूर्व जन्मों में बनाए वो माफ कर दिए जाए क्या? हाँ, हिसाब किताब तो चुकाने ही है। कर्म का सिद्धांत तो बहुत अचल अडोल है, इसलिए अचल अडोल स्थिति रखनी है तो कर्म की गति को भी अच्छी तरह समझ के चलना है। कई सोचते हैं ना कि भी मेरे सामने ही ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा चलता है, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करता है? उसी में ही उसका जवाब है कि मेरे साथ ही क्यों करता है, बताओ। कोई हिसाब है ना, तब तो करते हैं। अगर वो मूल रूप से ही खराब व्यक्ति होता तो सबके साथ बुरा व्यवहार करता, पर वो दूसरों के साथ अच्छा कर रहा है और मेरे साथ नहीं कर रहा है, मीन्स मेरा और उसका हिसाब ठीक नहीं है। तो परिस्थितियों को हम टाल नहीं सकते। हाँ, हम क्रिएट ना करें अपने व्यवहार से, अपने कर्म से नए हिसाब किताब खड़े ना करें, ये हमारे अंडर कंट्रोल है। और वो तो बाबा ने सिखाया है कि आपको अब कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, कैसा देखना है, कैसा व्यवहार करना है, सबके साथ कैसा चलना है। हाँ, वो तो बाबा ने विधि हमें सिखाई है और रोज सिखाते हैं मुरली में, ताकि नए हिसाब किताब हम ना बनाएं, पर बने हुए हिसाब किताब तो हमें चुकाने ही हैं। तो अगर ये समझ बुद्धि में है तो कैसा भी उठपटांग कोई व्यवहार करें या कैसी भी बातें आए, हम घबराएंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी, दो बोला उसने मैं चार बोलूंगी, है ना? नहीं, हम कौन हैं और हमें भगवान ने क्या सिखाया है, अगर ये रियलाइजेशन हर कदम है तो आपका व्यवहार तो ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, आपको ये महसूसता है। क्यों दादी तीन बार ओम शांति बुलाती थी, क्या अर्थ कहती थी? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, यही तो महसूसता चाहिए। लौकिक में जब आप महसूस करते हैं कि भाई हम तो फलाने कुल के हैं, इस जाति के हैं, इस खानदान के हैं, हमारा तो बहुत बड़ा मान मरतबा है, ये महसूसता होती है तो उस रॉयलिटी से व्यक्ति चलती है ना, कि भाई हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे खानदान में ऐसा नहीं चलता है, हमारे समाज में तो ऐसे नियम है ना, वो लौकिक महसूसता है। या अलौकिक महसूसता है कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और किस कार्य के लिए अब हम निमित्त हैं। तो अगर ये रियलाइजेशन है तो कोई कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव, संस्कार हो, व्यवहार हो, मुझे कैसे व्यवहार करना है। बेशक मुझे कोई बुद्धू नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, पर जो उचित करना है वो भी ढंग से करना है ना, समझदारी से, अलौकिकता से करना है। तो अगर खुद ज्ञान स्वरूप है तो आप इस प्रकार से सोचेंगे, रिएक्शन नहीं आएगा और आपका व्यवहार ठीक चलेगा। पर ज्ञान हो, क्यों बाबा दादियां बहनें कहती है रोज क्लास करो, रोज मुरली सुनो। अभी भी संडे की मुरली में क्या था, शुभ चिंतक कौन बन सकेगा, जो ज्ञान रत्नों से भरपूर होगा। तो हमारी मनसा ठीक रहेगी, उसने ऐसा ऐसा बोला मैं डिस्टर्ब हो गई, पर क्यों हो गई, मुझे क्यों होना है, बोला तो उसने ने, उनकी वाणी खराब थी, मुझे क्यों अवस्था बिगाड़नी चाहिए, मुझे क्यों स्वीकार करना चाहिए, मैंने ऐसा किया नहीं है, मैं ऐसी हूं नहीं, है ना, तो मैं क्यों स्वीकार करूं। बाबा कहते हैं ना, आपस में आप कुछ भी एक दो को कहते हैं, आप तो बिल्कुल बुद्धू है, कुछ आता नहीं है, तो वो टाइटल एकदम लग जाते हैं कि मेरे को बुद्धू कहा, क्या समझते हैं, मेरे को मूर्ख कहा, मनुष्यों का दिया हुआ टाइटल लग जाता है। बाबा कितने टाइटल देते हैं, वो नहीं लगता है, वहां कहेंगे मुझे बुरा लग गया, क्योंकि हमने अपना लेवल अभी भी वो ही साधारण लौकिक रखा। हम आपस में ऊंचे नहीं उठे, आपस में कॉमन ही बने रहते हैं तो एक दो की बात लग जाती है, पर आप ज्ञान स्वरूप बन जाओ, सेंसिबल बन जाओ, समझदार बन जाओ, आप अपनी रूहानियत में स्थित हो जाओ, भल हमें मिलके पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं संगठन में रहते हुए व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो, अपने आप को ज्यादा रूहानी बनाओ, अलौकिक बनाओ, और उसके लिए बाबा ने जो कहा है वो टाइटल रियलाइज करो कि हम ज्ञानी तो आत्मा है, सत्य ज्ञानी आत्मा है। भल दुनिया में बहुत पढ़े लिखे हैं पर आत्मा स्थिति को उच्च शुद्ध शक्तिशाली एकरस बनाना, वो ज्ञान तो वहां नहीं है ना विचारों की। हम सत्य ज्ञानी आत्माएं, हम परमात्मा योगी हैं। अब हमारा योग किससे है, किससे है? डायरेक्ट भगवान से। अब कोई हम महात्माओं से, धर्मात्माओं से, देवात्माओं से, मनुष्य आत्माओं से बुद्धि लगा के नहीं बैठे। अब हम अपना योग परमात्मा से लगा कर बैठे। तो अपनी इस ऊंचाई को, वास्तविकता को, सत्यता को रियलाइज करना है, और उस रियलाइजेशन में हम रहते हैं तो हम अपनी ऊंची अवस्था रख सकते हैं। कोई आपसे मिलने आते हैं, आप आत्मभिमानी हैं तो आपको तुरंत उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई दुख की बात करते हैं, कोई एक्सीडेंट की बात करते हैं, कोई किस प्रॉब्लम की, आज हरेक के मन में क्या है बताइए, यही बातें हैं। वो आके कहेंगे आप भी कॉमन लेवल पर होंगे तो आपको भी वो है, क्या एक्सीडेंट हुआ, किसको दुख हुआ, फलाना हुआ। पर अगर आप आत्मभिमानी हैं, बाबा की याद में हैं, अपने आप को देहभान से न्यारा रखने की प्रैक्टिस करते हैं तो बात का प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, जो हुआ उसके लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं वो करना। तो बहुत छोटी छोटी कॉमन बातों में हम अपनी स्थिति ऊंची नीची करते ही रहते हैं। भाई कोई चीज फूट गई, एक चीज के पीछे कैसे फूट गई, क्या हुआ, ध्यान नहीं दिया, अरे कितनी वैल्यूएबल थी, मैं कहां से लाई थी, हा? चीज के लिए अवस्था बिगाड़ देते, चीज वैल्यूएबल या अवस्था वैल्यूएबल। ठीक है, हम शांति से कहे अरे भाई बहुत अच्छी चीज थी, संभालने जैसी थी, थोड़ा ध्यान से करिए, है ना, पर अवस्था बिगाड़ के नहीं। फिर हमारे शब्द भी बिगड़ेंगे, उसकी भी अवस्था बिगड़ेगी, है ना, फिर घंटा दो घंटा चार घंटा प्रभाव चलेगा, आपस में मुंह चढ़ जाएंगे, हाँ बोलना भारी हो जाएगा, होता है ना ये सब चीजें। वैल्यूएबल क्या है। हमें हर चीज संभालनी है, पर चीजें हमारे लिए हैं, है ना। हमारी अवस्था उन चीजों के लिए नहीं। तो प्रैक्टिकल, क्योंकि अचल अडोल बनना है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा लक्ष्य है कि अंत में एक बाबा की याद रहे, है ना। अब जीवन भर जो बातें याद करेंगे वही अंत में याद आएगा। तो जीवन भर कौन सी बातें हम याद करते हैं? देखो अपने आप, ज्ञान योग तो रोज करते हैं, पर अंदर से हमारी लगन, अटेंशन, अटैचमेंट कहाँ है? तो जिस परिवार के साथ हमें दिन रात उठना है, बैठना है, रहना है, खाना है, जीना है, अवस्था तो वहां ही बिगड़ती है ना ज्यादा। दूसरे तो अच्छे ही लगते हैं ना दूसरे तो अच्छे ही लगते हैं, उनके साथ कहाँ दिन रात उठना बैठना है। हर कोई सोचता है उसका पति बहुत अच्छा है, वो कहेंगे उनकी बीबी बहुत अच्छी है, हा? मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, है ना। अब वो सोचती है, उनको क्या पता, मैं ही जानती हूँ कि वो कैसे हैं, हा? तो अवस्था वैसे तो अच्छी ही रहती है ना, बिगड़ती कहाँ है। आपसी संबंधों में, घर परिवार की और नौकरी धंधे की बातों में, तो वहां ही हमें लक्ष्य रखना है, अटेंशन रखना है कि जो हमें मिले हैं, बिना वजह तो कोई नहीं मिला है, है ना। बाबा कहते हैं ना, कर्मी के अकाउंट से ही मिले हैं। सोचते हैं ना, मिले तो मिले, फिर मत मिलना और कोई जन्म में, हा? क्यों? हमारे अपने हिसाब से मिले हैं। हम सिर्फ उस व्यक्ति को देखते हैं ना, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे, वहां हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी कैसे हैं। हम खुद भी कैसे, हमें भी कोई सहन कर रहा है, हमसे भी कोई एडजस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है ना, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो मैं दूसरे के लिए कैसे सोच सकती हूं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं। हम भी तो कुछ हैं ऐसे टेढ़े बेढ़े। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन कि हम खुद कैसे हैं, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हमारे में भी कोई ना कोई कमियां हैं, उसमें एक है, मेरे में दूसरी है। तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन हमें क्लियर है, तो हमें फिर वो विचार नहीं आएंगे कि ये ऐसे हैं कैसे। ठीक है, हमें दोनों तरफ से लक्ष्य रहे एडजस्टमेंट का, कुछ हम भी एडजस्ट करें, कुछ और भी एडजस्ट करें, है ना। दोनों तरफ से होता है तो इजीली हम मिलके चल सकते हैं, पर शुरुआत तो खुद से ही करनी होती है। जिम्मेवार तो हम अपने ही बन सकते हैं, दूसरे के तो बन नहीं सकते। तो जितना हम आत्म स्थिति में रहते हैं और अपनी वास्तविकता, जो मुझ आत्मा के गुण, स्वभाव संस्कार शक्ति है उसकी क्लियर मुझे महसूसता है, तो मैं दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मिलके चल सकते हैं। बाबा ने ये पाठ तो सिखाया है ना हमें कि वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी आत्माएं हैं, हर आत्मा का स्वभाव संस्कार अपना अपना है। तो प्रैक्टिकली हम अपने आप को विभिन्न स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के बीच भी हम अपने आप को ठीक एक रस रख सकते हैं, हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना। ये तो फर्स्ट लेवल है ना, उसको तो पहले क्रॉस करना है ना। फिर परिस्थितियां हैं, गवर्नमेंट के तरफ से आती हैं, प्रकृति के तरफ से आती हैं, परिस्थितियां तो आती है ना, नौकरी में, धंधे में, बिजनेस में, सब में। तो वहां भी हमें हिम्मत से, धीरज से और योग बल से चलना है। फेस तो इन पावर्स से करना है ना। परिस्थिति हर किसी के सामने आती है, पर कोई व्यापारी टेंस हो जाता है, तनाव में आ जाता है, कोई डिप्रेस हो जाते हैं, कोई हंसी खुशी से पार कर देते हैं। परिस्थिति हर किसी के सामने आती है, पर अपनी आंतरिक आत्म स्थिति से हम उनको पार करते हैं। उस समय डिस्टर्ब हो गए, टेंस हो गए, हिल हो गए, तो बाबा कहते हैं ना, फिर सॉल्यूशन नहीं नजर आएगा। जब कोई भी परिस्थिति स्थिति आती है तो शांति और धीरज से हमें उनका सामना करना होता है। हम तो घबरा गए, घबरा गए तो फिर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। जब घबरा गए, हम तो डिस्टर्ब हो गए, तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे। ठीक है, परिस्थिति आई है, इसलिए ये जो रोज हमें न्यारा रहने की प्रैक्टिस बाबा कराते हैं ना, कि रोज देह भान से न्यारे रहो, रोज अपने रोल से न्यारे रहो कि भाई ये ड्रामा में रोल है, पार्ट है। तो आप निरीक्षण कर सकेंगे कि क्या बात आई है, कैसे उनको पार कर सकते हैं। जब ये नोटबंदी और जीएसटी का हुआ था, तो अपने ही बाबा के एक बच्चे ने अनुभव अपना सुनाया कि हर बिजनेस का अपना एसोसिएशन होता है, फिर वो एसोसिएशन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से मिलते हैं और बात करते हैं, कहते हैं सब कैसे कोई जोर से, कोई ये हो के डिस्टर्ब हो के चिल्ला के अपनी अपनी बातें कर रहे थे, अपना भाई शांति से बैठे थे। जब उनको पूछा तो उन्होंने शांति से बात किया, तो इससे वो सेक्रेटरी इतना प्रभावित हुआ कि मैं देख रहा था कि सब ऊंचे नीचे हो रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कैसी बहसबाजी कर रहे हैं, आप बिल्कुल शांति से बैठे थे। तो उसने बताया कि देखो, जो बात कहनी है वो तो मैंने आपको कही, पर गुस्से हो जाऊं, डिस्टर्ब हो जाऊं, चिल्लाऊं, गाली बोलूं, भाषा बिगाड़ूं, आपसे व्यवहार बिगाड़ूं, तो क्या फायदा। तो वो बहुत प्रभावित हुआ कि इस ज्ञान योग के कारण आप में ये कितनी शक्ति रही, और उसकी बात को ध्यान से सुना और महत्व दिया गया। तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि रोज रोज अभ्यास करके अपनी स्थिति बनाओ और उस स्थिति से परिस्थिति का सामना करो। बाकी तो फिर अपने ही तन मन पर असर आता है, खुद का ही दिमाग खराब हो जाता है या कितनी अवस्था बिगड़ जाती हमारी, है ना। इन रोज की परिस्थितियों में हम विजयी बनेंगे तो जो बाबा कहते हैं कि अंतिम परिस्थितियां माया जीत बनने का जो लक्ष्य है वहां भी हम विजयी बन सकेंगे। हमारा लक्ष्य तो माया जीत बनने का है। दुनिया में देखते हैं ना कि कितने लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं, सफल हो जाते हैं, शोहरत पा लेते हैं, मान मरतबा पा लेते हैं, फिर क्या होता है, उनका ही अपना कोई ना कोई स्वभाव, संस्कार, कमजोरी उस ऊंचाई से उसको गिराते हैं। तो हमारा लक्ष्य माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत बनने का है। और हम बन सकते हैं, मुश्किल नहीं। भगवान बना रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमें सिर्फ हिम्मत से मजबूत रहना है, अचल अडोल रहना है, अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है। देखो, शरीर में स्थिरता ना हो, शरीर आपका हिल रहा हो तो आपको चलने में, उठने में, बैठने में ठीक रहता है। जिनको पार्किंसन हो जाता है, ऐसे से होता रहता है, टांगे थिरकती रहती है, तो जीवन के हर कार्य में आपको अच्छा थोड़ी, सहजता थोड़ी लगेगी। ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार की स्थिरता, कि जो हमने शुद्धता अपनाई है, हमें अब हिलना नहीं। इतना जो पुरुषार्थ किया है उसको हमें सफल करना है। फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखना, एक बार अवस्था बना लेते हैं ना, हम अपनी आत्मस्थिति शक्तिशाली बना लेते हैं, फिर कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं लगती, आप सहज पार कर सकते हैं। और हर कोई जानते हैं कि अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अच्छी होती जाएंगी या बिगड़ती जाएंगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी या कम होगी, ट्रैफिक जाम होगा या कम होगा, क्या लगता है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। तो हमें खुद के लिए ही लक्ष्य रख देना है कि मुझे इन परिस्थितियों में अपने आप को अचल अड़ोल रखना है, नहीं तो पुरुषार्थ करो, फिर डिस्टर्ब हो जाओ, स्थिति जीरो, फिर पुरुषार्थ करो, फिर डिस्टर्ब हो जाओ। दिया बुझे फिर जलाओ, फिर बुझे फिर जलाओ, वो ठीक है या सेंसिबल बन के पहले ही ग्रीत डाल दो ताकि ज्योत स्थिर जलती रहे। किसको सेंसिबल कहें? कि बुझने से जब लगे कि बुझने लगा है तो ग्रीत डाल दो, सेफ कर दो उसको। अपने आप में भी जब लगे कि बात आ रही है और डिस्टर्बेंस हो रहा है तो पहले ही अपने आप को सावधान कर दो कि नहीं, डिस्टर्ब होके कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। ठीक रहकर हर चीज को ठीक हम कर सकते। तो भट्टी में आप सब आए हैं और समय है, फुर्सत है, बैठिए अकेले अकेले शांति से एकांत में बैठिए। यहां भी झुंड झुंड नहीं, बातें नहीं, थोड़ा साइलेंस में बैठिए, अकेले अकेले बैठिए और सोचिए अपनी स्थिति के लिए। जो कोई नहीं कर सकते हैं वो धारणाएं आप सब ने की, बहुत वैल्यूएबल है, पावरफुल आप आत्माएं। घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान ने कहा कमल फूल समान बनो और आप बने हैं। बाबा कहते हैं ना कि बाकी सब शिक्षाएं और धर्म संप्रदाय मठ पंथ गुरु सन्यासी देते हैं। प्रेम से बोलो, सच बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब बातें सब सिखाते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो कोई नहीं सिखाता, वो बाबा सिखाते हैं और आप सबने सीखा, वो धारण किया है। अन्न शुद्धि का नियम आप पालन करते हैं, स्वादेंद्रिय पर विजय, वो भी एक बहुत बड़ा संयम है, कंट्रोल है। जो भी हमारे नियम मर्यादाएं हैं, कई लोग आपको कहते होंगे भाई आप रोज जा सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते। इतना भी नहीं होता है उनसे, है ना भाई, आप रोज क्लास में जाते हैं, बाकी हमारे से तो नहीं होता। रोज सुबह जल्दी उठना, निंद्रा जीत बनना और सुबह का समय, है ना, ज्ञान योग को में सफल कर अपने आप को शक्तिशाली बना लेना, जागृत बना लेना, है ना। मुरली यही तो हमें देते है, हम कौन है, क्या है, क्या करना है, बाबा क्या कहते हैं, समय क्या कहता है। सुबह सुबह आत्मा जागृत हो जाती, उसी स्थिति से दिन भर का कारोबार करते हैं। सिर्फ लक्ष्य रखना है ना। अब जो आगे का प्रोग्रेस है ना भाई, जिस क्षेत्र में हमने चुना है उसमें आगे बढ़ना होता है ना, कि जहां है वहीं रहना होता है। हाँ भाई बताओ, व्यापारी है ना सारे मोरबी के, तो हर एक लक्ष्य रखता है ना भाई, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान हो, शोरूम हो, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख का टर्नओवर हो, ये हो, हर कोई अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है ना। तो हम सब ने जीवन के लिए कौन सा फील्ड चुना है? ज्ञान योग का हमने फील्ड चुना है, तो हमें उसमें आगे बढ़ना। कि हमारे शब्दों में ऊपर नीचाई ना आवे, हमारे व्यवहार में बिगाड़ ना आवे, हमारा चेहरा ना बिगड़े, हमारे भाव और भावना ना बिगड़े। ये तो आप पर्सनल इंटरनल है ना, वो आपको हमें खुद दृढ़ता करनी होगी। ये समय है बनने का, ये समय है भगवान बना रहे हैं। सिर्फ और लक्ष्य रखना है, हम खुश ना हो जाएं, हम ज्ञानी है, योगी है, पवित्र है, सेवाधारी है, सहयोगी है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी अचीवमेंट है, पर अल्टीमेट तो आत्मा के साथ तो अवस्था जाएगी, है ना। जिस अवस्था से संगम युग पूरा करेंगे उसी अवस्था से सतयुग आप शुरू करेंगे, है ना। ज्ञान तो है ही, अटेंशन एंड पावर बस। तो योग करना है और लक्ष्य रखना है। तो कौन कौन रखेंगे, कि अब हमारा चेहरा नहीं बिगड़ेगा, वाणी नहीं बिगड़ेगी, भाव नहीं बिगड़ेंगे, लक्ष्य रखना है, हो सकता है ना। थोड़ा ताकत से हाथ ऊपर करो, मुरबी के भाई बहने तो मुरब्बी भाई बहने है ना, बड़े को मुरब्बी कहते हैं ना, पहले ऐसे पत्र में लिखते थे मुरब्बी भाई पिताजी, हाँ तो मुरबी माना मुरब्बी भाई बहने, बाप समान। तो ये रिजल्ट भी हमें लाना ही है। ओम शांति। अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले, अपनी अवस्था कैसी बनानी, मन ही मन बाबा से बात कर लो 3 मिनट में बस।
मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा।